वमा यफअलू मिन खैरिन फलन युकफरू। याद रखो, जो भी तुम कोई भलाई करोगे ना, उसकी नाशुक्री नहीं की जाएगी, नाकदरी नहीं की जाएगी अल्लाह के हम, वो तुम्हें उसका जरूर अजर देगा। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला जानता है जो तकवे वाले हैं, जो लोग हैं वो अल्लाह को राजी करने के लिए। तकवा का आपको पिछली बार बताया था ना, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, कि जो अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने के लिए कोशिशें करते रहते हैं और उसको राजी करने के लिए नेकी का कोई काम हाथ से जाने नहीं देते, ये भी नेकी कर लूँ वो भी नेकी कर लूँ, अल्लाह पता नहीं किस चीज से मेरे से खुश हो जाए, क्या पता अल्लाह इससे खुश हो जाए, क्या पता अल्लाह इस, नहीं 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 मैंने अल्लाह को नाराज नहीं करना, तो वो मुत्तकी होते हैं। अल्लाह को बड़ी अच्छी तरह पता है मुत्तकी कौन है, तो जो भी तुम करोगे ना जाया नहीं जाएगा, अल्लाह उसकी कदरदानी करता है। और इन लोगों के लिए भी है कि वो जो उनकी बुराइयां कर रहे हैं आके, कि नहीं ये तो ऐसे बुरे बुरे हैं, नहीं अल्लाह ताला को पता है कि वो क्या खैर करते हैं, और अल्लाह उनकी कदरदानी करेगा। इन लदीन कफरू लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिन अल्लाहि शैआ, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, हरगिज नहीं उनको उनकी माल और औलाद बचा सकते, यानी जिन्होंने सिर्फ इस दुनिया को ही सब कुछ समझ के इसमें खर्च किया, और खर्च करने में सिर्फ माल नहीं आता, सलाहियतें भी आती हैं, जिंदगियां भी आती हैं, वक्त भी आता है, जवानियां भी आती हैं, जो इसने यही के लिए लगा दी ना, तो वो आखिरत में उनको कोई काम नहीं देंगी, कोई काम नहीं आएंगी। यानी अपना माल लगा रहे हैं, बाज लोग क्या चैरिटी वर्क करते हैं कि अपनी तस्वीर खिंचवा लेते हैं, सिलाई मशीन दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, वो जी तस्वीरें खिंचवा खिंचवा के, क्या क्या उसका मतमईन नजर है कि मेरी शोहरत हो और मेरी अखबार में तस्वीरें आए और खबरों के अंदर मुझे दिखाया जाए, कुछ नहीं उनको काम देगा। इसलिए क्योंकि ये माल और औलाद इनको लगाया ही नहीं अल्लाह के लिए ना। देखिए ये एक जिंदगी है जो काफिर की जिंदगी, काफिर की जिंदगी में क्या होता है, मटीरियलिज्म हर चीज है, मादियत, वो मादियत में जीते हैं, मादी तरक्की, मैंने कितना बना लिया, कितना पैसा कमा लिया, मेरी औलाद कहाँ से कहाँ पहुंच गई, बस यही इनके एसेट्स हैं, उनकी निगाह आखरत में नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि उसके सामने दुनिया होती है, उसने सब कुछ यहीं के लिए किया, तो आखरत में उनके लिए क्या काम आएगी। जैसे मुताम बिन अदी के बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो वो बहुत खाने खिलाता था लोगों को, कि क्या उसको आखरत में कुछ मिलेगा, तो आपने फरमाया कि उसने आखरत के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, वो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता था, आखरत के लिए उसने कुछ नहीं किया, उसका ये नहीं था कि मुझे आखरत में इसका कोई अजर मिले, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इन लोगों का भी ये नहीं है ना, इन्होंने अपनी औलाद को तैयार किया इसके लिए कि आखिरत में हमारे कुछ काम आ जाएगी, हमारे सदका जारिया बने, ना माल को इस नीयत से लगाया, बस इसलिए कमाते रहे कि जो है ना अपना बढ़ाएं आगे से आगे, और वो समझते हैं कि जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये काफिराना लाइफ स्टाइल है। फिर जो इस तरह का ही करेगा, कोई मुसलमान हो के भी ऐसा ही इसी तरह अपने माल और औलाद को खर्च करेगा लगाएगा, तो उसके लिए भी कोई काम नहीं आएगी। लेकिन दुनिया में वो समझते हैं कि वाह हम बहुत ग्रेट हैं और हमारी क्या बात है और हम बड़े अकलमंद हैं, देखो कितनी हमने कमाइयां कर दी और हमारी औलादें कहाँ से कहाँ पहुंच गई, उलाइका साहबुन नार, यही लोग साथी हैं आके, हम फीहा खालिदुन, इसमें हमेशा रहेंगे, मतलू मा युन्फिकूना फी हादिहि हयात दुनिया, वो अगर खर्च भी करते हैं ना कुछ इस दुनिया की जिंदगी में, मसलन है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो खर्च करने के अंदर माल भी आ गया, खर्च करने में जवानी भी आ गई, खर्च करने में इंसान की कोई भी चीज जो भी वो खर्च करते हैं, वो उनमें इनको कुछ हासिल इसलिए नहीं होगा वहां पे भी जाके, और उसकी मिसाल यहाँ पे दी गई इसलिए नहीं हासिल होगा क्योंकि इन्होंने अल्लाह के लिए नहीं कुछ किया, सब कुछ यहीं पे लगाया, या इन्वेस्टमेंट इनकी सारी की सारी दुनिया में थी। तो इनकी मिसाल कैसी है, कमाकल हिरी है, जैसे हवा है, फीहा सिरुन, इसमें सख्त सर्दी है, यानी इतनी ठंडी हवा, और आपको पता है जब ठंडी या हवा जो होती है ना, जैसे यहाँ पे भी जब सर्दियों में कभी ठंडी या हवा चलती है, तो जैसे सारे घास पीली और इस तरह से हो जाता है, जो सख्त सर्दी वाली हवा होती है वो खेतियों को भी बर्बाद कर देती है, खड़ी फसल को तबाह कर देती। तो इनकी मिसाल ऐसी है जैसे सख्त सर्द हवा चली, असाबत हर सा कौमिन, वो पहुंचती है खेती को एक कौम की, जलम जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहम अपने नफ्सों पर, फअहलकत हो, तो वो उस खेती को तबाह करके रख देती। ये इनका हाल है कि जैसे आंधी है सख्त ठंडी, वो खेती को उजाड़ देती है, तो इनकी भी खड़ी फसल थी जिसके ऊपर ऐसी आंधी चली जिसने उसको तबाह हो बर्बाद कर दिया। ये किसकी मिसाल है, जब कोई काफिर है मुशरिक है वो, या अल्लाह रसूल का नाफरमान है, या वो ऐसा है जिसको कोई ईमान नहीं है, जिसने आखरत में कुछ नहीं उसको चाहिए, बस उसका सारा कुछ दुनिया में, यही के उसकी इन्वेस्टमेंट है, यही के लिए वो खर्च करता है। तो वो ऐसे ही है कि उसने बड़ा कुछ माल कमा लिया, बड़ा कुछ, उसकी औलाद बड़ी बड़ी ओहदों पे पहुंच गई, सब कुछ है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सख्त सर्द हवा चली और सारी खेती बर्बाद हो गई, यानी मौत आई और सब कुछ खत्म हो गया, सब जीरो हो गया। मोमिन के लिए तो मौत के बाद भी सदका जारी है ना, उसका माल और उसकी औलाद भी। इसके लिए कुछ भी खर्च करना, या कोई उसने सलाहियत खर्च की है या उसने अपनी जिंदगी लगाई, तो मोमिन के लिए तो सदका जारी है, उसको तो आगे भी अजर मिलता रहे। इसके लिए देखें, जो भी वो खर्च करे, मतलब मा युन्फिकुना, उसके जो भी उसने खर्च किया, वो माल है या कुछ भी उसने खर्च किया, सब खत्म हो गया। इसलिए कि वो उसकी जिंदगी क्या थी, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो बस, वो फिक्र की बात नहीं। तो फिर सूरह कहफ के एंड में आता है ना, आप एंड उसका पढ़िएगा, उसमें बताया गया असल खसारा पाने वाले कौन है, इनकी जिंदगी की सारी मेहनत बस यहीं पे लगी और जाया हो गई, और वो समझते रहे वो बड़े सियाने हैं, वो बड़े अकलमंद हैं, वो सब जाया। आमिलतुन्ना सुबह, सूरह वाशिया में आता है ना, मेहनत कर करके थके हुए होंगे लेकिन उस दिन आग में जाएंगे, क्योंकि तो इंसान ये नहीं समझता कि जो जब वो यहीं के लिए सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, तो एक मौत का झटका आना है और मल्टीप्लाई विद जीरो हो जाना, और इसका रिजल्ट जीरो हो जाना। जायदादें हैं उसकी, उसने कोई प्रॉपर्टियां ऐसी बनाई हुई हैं, उसके कोई वेकेशन होम्स हैं, उसके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं, होटल हैं, फलाना है, और वो इस पे बड़ा फखर करता है, देखो मैंने कितना कमा लिया, मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। उस दिन इंसान कहेगा, हंस रहते होंगे उसको, मेरा माल तो मेरे कोई काम नहीं आया। सूरह हाका में है ना, मेरा मेरा वो जो चौधराहट थी मेरी, वो खसा पे खत्म हो गई। तो ये जो इंसान याद नहीं रखता ना, कि या अय्युहल इंसान, अल्लाह ने याद कराया तुम्हें, तुम याद रखो, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, तुम याद रखना है इंसान, ये जो तुम चल रहे हो ना अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहे हो, इसमें एंड होना है अल्लाह के पास, और सामने अल्लाह होगा, उससे मुलाकात हो जानी। ये तुम चलते जा रहे हो ना स्टेप बाय स्टेप, तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता ये सफर चलता जा रहा है ना, तुम सोच रहे मैं अपनी बर्थडे करूं, क्योंकि मैं बहुत जबरदस्त अब 50 साल की, 60 साल की, 70 80 साल की हो गई हूँ, तो मैं अब अपनी बर्थडे करूं। ये तो जो तुम्हारा सफर चल रहा है, ये तो अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा है, ये तो तुम्हें लेके जाता जा रहा है, तुम इसको रोक नहीं सकते, तुम चले हुए हो इंसान, तुम भूले हुए हो कि तुम चल रहे हो, जब तुम्हारा सफर खत्म होना है तो सामने अल्लाह होगा, उससे मुलाकात होनी। तो लिहाजा जो तुम बना रहे हो इस दुनिया में, और तुम ये सोच रहे हो कि ये मैं बड़ा कुछ बना रहा हूं, और ये सिर्फ इस दुनिया के लिए अगर कर रहे हो, कुछ भी नहीं हासिल होना। जो लोग यही यही माइंडसेट रखते हैं, चाहे वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, इसी माइंडसेट से वो भी जीते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे मुसलमान इस सेम माइंडसेट के साथ हैं, तो उनके लिए भी कुछ फायदा नहीं है, उनके लिए भी ऐसे ही होगा जैसे मौत आई तो सारा कुछ उनका खत्म हो गया। इसलिए कि सारी निमाइशी चीजें थी ना, सारी जाहरी आमाल थे, ऊपर ऊपर के थे, ना तो आखरत के लिए कुछ था, ना उसके लिए कोई जज्बा था कि मुझे कुछ मिले। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, दुनिया मोमिन के लिए क्या है, कैद खाना है। कैद खाना जैसे जेल होती है, अब कैदी जो जेल में होता है वो क्या करता है, वो हमेशा किधर सोच रहा होता है कि जब मैं रिहा होऊंगा तो ऐसे होगा, जब मैं रिहा होऊंगा तो ये करूंगा, वो यहाँ के लिए नहीं सोच रहा होता कि मैं यहाँ पे मजा कर लूँ, यहाँ पे मुझे आरामदेह बिस्तर मिल जाए, यहाँ पे मेरी ये डेकोरेशन हो, यहाँ पे मुझे फन हो, एंटरटेनमेंट, वो हमेशा बाहर के लिए सोचता रहता है ना, उसकी सोच हमेशा होती है कि मैं रिहा होके ऐसा करूंगा। मोमिन के लिए रिहाई जन्नत है, आखरत है, वो हर काम वहां के लिए सोचता है, मैं वहां मैं निकलूंगा तो क्या होगा, मैं वहां पे ये अजर पाऊंगा, मैं वहां पे यही, तो उसको फिर ये सारी ना फिर खैरात ऐसे ही नहीं करता, यही फिर उसको नेकियों में दौड़ाती है ये चीज, समझ आई बात। तो अदरवाइज ये चीज ना हुई ना कि आखरत में मुझे ये मिलना, और मैंने उसके लिए करना है, और मैंने उसके लिए मेहनत करनी है, और कुछ लगाना है, और दौड़ धूप करनी, ये जज्बा ना हुआ तो सारा बस एक सर्द हवा की देर आई और सारी खेती जल के खत्म हो जानी है, कुछ भी नहीं रहना फिर, ठीक है, हवा मंथूरा हो जाएगी। وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. اللہ نے تو نہیں ان کے اوپر ظلم کیا کہ ان کی نیکیوں کو ضائع کرتے، انہوں نے کی ہی نہیں تھی آخرت کے لیے، تو ضائع ہی جب سارا کچھ انہوں نے یہیں کے لیے کیا تھا، یہیں کے لیے جمع کیا، یہیں کے لیے خرچ کیا، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کچھ کیا، ختم. تو اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونکم، اے ایمان والو تم دلی دوست نہ بناؤ اپنے سوا کسی کو. اصل میں اس وقت میں جو مسلمان تھے، ظاہر ہے یہ یہودیوں کے ساتھ رہ ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے بزنس ٹرمز بھی تھے، حلیف ہونے کے بھی ان کے ساتھ ان کے تھے تعلقات، ان کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز پہ یہ روڈ رہتے تھے، تو ان کے ساتھ میل جول بھی ہوتا تھا اور ان کے ساتھ ظاہر ہے اٹھتے بیٹھتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اپنا بھیدی نہ بنانا، ان کو اپنا رازدان نہ بنانا. کیوں؟ لا یألونکم خبالا، وہ نہیں کمی کریں گے کسی خرابی کی تمہیں. ودو معنی تم، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ، کسی مصیبت میں پڑ جاؤ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کسی کی کو صحبت نہ دینا، کسی کے ساتھ وہ نہ رکھنا دوستی، اور تمہارا کھانا متقی کھائیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، یعنی جب تم کمپنی میں کس کی رہو، نیک لوگوں کی. حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ فلاں بڑا اچھا لکھنے والا ہے، تو آپ اس کو اپنا سیکٹری بنا لیں، مقرر رکھ لیں. تو فرمایا یہ تو مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بتانا رکھ لوں. بتانا کا مطلب یہاں پہ یہ بھی ہے، رازدان، یعنی جب آپ کسی کو عہدہ دیں، حکومتی عہدہ. اسی سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ غیر مسلم کو مسلمان مملکت میں بڑے عہدے نہ دیا جائیں، مثلا وہ جرنیل بنا دیا، صدر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، کہ غیر مسلم کو آپ اپنے راز نہ دو. ظاہر ہے جب آپ اس کو عہدہ دیں گے تو آپ اپنے راز اس کو شیئر کریں گے، راز دیں گے. اسی وجہ سے اس سے منع کیا گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں ان کو بتانا بناؤ. ہاں، اور چھوٹے موٹے جتنے بھی پروفیشنز ہیں وہ ان میں چلے جائیں، لیکن بڑا ہے کہ ایسا کوئی عہدہ جس کے اندر، جیسے آپ کو میں نے بتایا یہاں پہ حضرت عمر کو کہا گیا کہ اس کو سیکٹری رکھ لو، انہوں نے کہا نہیں. قد بدت البغضاء من افواہم، تحقیق ظاہر ہو گئی دشمنی ان کے منہوں سے. وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو حسد کی آگ ان کے سینوں میں جل رہی ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں اس وقت میں بھی کچھ دشمنیاں تو ان کی سامنے آ گئیں کہ انہوں نے جیسے مسلمانوں کے خلاف یہود نے پروپوگینڈاز کیے، جیسے تحویل قبلہ کے وقت کیا، جیسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون قتل کرنے کی بھی کوشش کی. تو یہ جو ان کی ظاہر ہو گئی وہ تو ہوئی، جو ان کے سینوں میں وہ تو اسے بہت بڑی ہیں. اسی لیے تو یہ خیبر پہ بھی چلے گئے تھے، تو وہاں پہ بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے. ہر وقت مشرقین مکہ کو کوئی نہ کوئی وہ کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح وہ حملے کے کر دیں، اور پھر احزاب میں آئے بھی تھے. یہ قد بینا لکم الایات ان کنتم تعقلون، تحقیق بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے آیتیں اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو. اگر تمہیں کچھ عقل ہو تو تم سمجھو اس بات کو کہ وہ تو تمہارے لیے دل کے اندر اتنا بغض رکھتے ہیں، تم ان کو بتانا کیسے بنا سکتے ہو؟ یعنی ان کے ساتھ ویسے آپ ان کو دعوت دیں دین کی، آپ ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی بھی کریں گے تو ان کی دعوت دیں گے. آپ کے وہ ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملیں. آپ کہیں ڈاکٹر ہیں، آپ کسی ایسے پروفیشن میں، آپ کے سامنے ایسا مریض آ جاتا ہے، آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں، لیکن آپ اپنے راز نہ دیں ان کو، اپنے راز نہ دیں. کیونکہ آپ اپنے راز دیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے ان کو اپنے گھر کا بیدی بنا لیا، اور پھر وہ تو آپ کی خیر خواہی نہیں کر سکتے. ہاں تم ملائی تو حبونا ولا یحبونا، تم ایسے لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے. تم ان سے محبت رکھتے کیونکہ اس وقت کے اس میں دیکھیں تو مسلمان عام میل جول کرتے تھے نا، وہ تو اسی طرح ملتے تھے جیسے پہلے ملتے تھے، تو انہوں نے تو کچھ نہیں اپنا. تم ان سے محبت رکھتے ہو، ایک یہ بھی تھا کہ مسلمان ان سے خیر خواہی رکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ نہیں ان سے خیر خواہی رکھتے تھے. مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ ابدی ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جائے، ایک مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچ جائے، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ایسا چاہتے تھے. یہ اپنے راز ان کو بتاتے تھے، وہ اپنے راز نہیں بتاتے تھے. تو تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ نہیں محبت رکھتے. وہ تو صحابہ کرام ایک ڈفرینٹ طرح سے محبت رکھتے تھے، خیر خواہی کی. آج ہم نے محبتیں کیسی کی ہیں؟ آج تو ہم نے محبتیں یہ کی ہیں کہ ہر چیز میں ہم نے ان کو کاپی کرنا ہے، ہمیں اتنی ان سے محبت ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے ہر چیز میں، किसकी तरफ देखना है कि हमने क्या पहनना है, हमने कैसे खाना है, हमने क्या किन प्रोफेशंस में जाना है, हमने किस तरह से दिखना है, हमने किस तरह से बोलना है, हमारे एक एक तरीके को देखें। जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसी का कॉपी करता है ना। तुम उनसे मोहब्बत करते हैं, आपकी वो ईद नहीं मनाते, हमारे आज मुसलमान क्रिसमस मनाने शुरू हो गए। वो अकीका नहीं करते, हम बर्थडेज करते हैं उनकी। आप हर चीज में देख ले, वो तो हमारी चीजों को नहीं अपनाते, हम उनकी चीजों को अपना रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम उनसे मोहब्बत रखते, वो तो नहीं तुमसे मोहब्बत रखते। हालांकि वह तुमना बिल किताबे कुल्ले, तुम तो सारी ही किताबों पर ईमान रखते हो, और इसके अंदर एक हिडन मैसेज ये है, वो तो सारी किताबों पर ईमान नहीं रखते, वो तो कुरान को नहीं मानते। तुम कहते हो मैं, हम तो रात को मानते, इंजील को मानते, वो तो नहीं आपके इस तरह मानते। तो तुम तो खुले दिल के हो, वो देखो तुम्हारे से इतना बोझ रखते हैं कि वो कभी तुम्हारे कुरान को नहीं मानेंगे, कभी उनको हमेशा ये होगा कि इनकी शरीयत ही ना नाफिज हो जाए, उनको ये हमेशा डर रहता। तो मुसलमान जो है वो कि आज की दुनिया के अंदर मुसलमान क्या कर रहा है, जबकि कुरान क्या बताता है, एक-एक चीज के अंदर देख ले। वो कभी आपका हिजाब नहीं लेंगे, वो कभी आपके अभाये नहीं पहनेंगे, आप उनके जैसे ड्रेसअप होने को फखर समझते हैं। और हर चीज में देख लें, उनके हर तरीके को अपनाने में देख लें, चाहे वो कोई फेस्टिवल है, कोई कल्चरल चीज है उनकी, चाहे कोई कुछ भी है, मगर हमें पसंद क्या आता है कि हम वैसे करें जैसे वो करते हैं, वो लेकिन वैसे नहीं करते जैसे हम करते हैं। वजालकुम कालू आमन्ना, वो जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम मान गए मान गए, हम भी तुम्हें मानते हैं, हम भी खुदा को मानते हैं, हम भी इसको मानते हैं। वाइदा खलो अदु अलैकुम अनामिला मिन गईज, जब वो तन्हा होते हैं तो वो काटते हैं अपनी उंगलियों को गुस्से से, कि ये गजब से, कि हाय ये इतना उनको तुम्हारे पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों नबी इनके पास आ गया, ये दीन इनको क्यों मिल गया, ये क्यों बेस्ट उम्मत बन गए। जाहिर है सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसी को आएगा जिस को किसी ओहदे से हटा के उसकी जगह दूसरे को रखा गया, सबसे ज्यादा उसको आता है ना, ये मेरी पोजीशन इसने ले ली है। तो उनके अंदर बहुत गुस्सा था, यहूद के अंदर। कुल मूतू भी गई थी को, तुमने अब उनके बराबर फिर उनका ऊपर गुस्सा करके और उनके साथ नहीं लड़ना, फिर तुम कहोगे ठीक है तुम फिर अपने गुस्से की आग के अंदर खुद ही जलो, जाओ फिर मरते रहो अपने गुस्से के अंदर। इन अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो सीनों के अंदर की बातों को भी जानता है, उसको पता है कि किसने दिल में क्या छुपाया है, कितना बोझ है, कितना गुस्सा है उसके दिल में दूसरे के लिए, अल्लाह को सब पता है। तो उनकी हकीकत खोल दी, मैंने आपको बताया था ना आयत 120 तक मुसलमानों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है माशरे में कैसे रहना है। देखो ये इन लोगों से अब बच के रहना, वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें भी करेंगे, तुम्हें अजियत भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और तुम्हें तरह तरह से सताने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन तुमने किस तरह से चलना है ये बता दिया गया। और आज हमने बिल्कुल उलट उलट बिल्कुल रविश इख्तियार की हुई है, हम बिल्कुल उलट चलते हैं। फिर फरमाया इन तमसस्कुम, फिर उनकी शर की और बात बताई गई, अगर पहुंचती है तुमको कोई भलाई तसुहुम, तो उनको बहुत बुरी लगती है, उनको अच्छी नहीं लगती कि तुम्हें कोई भलाई मिल रही है। और वह इन तुसिबकुम सय्यातुन, और अगर तुम्हें पहुंचती है कोई, तुमको कोई भलाई बुराई पहुंचती है, या फराहू भी है, तो वो बड़े खुश होते हैं इससे, इससे बहुत उनको खुशी मिलती है। अब देखें आप यहां पे उनके अंदर के कीने को बता दिया गया। याद रखिए इंसान का दोस्त वही होता है जो उसकी खुशी के अंदर खुश हो और उसके गम के अंदर वो गमगीन हो, ठीक है। मगर इनका तरीका क्या था, ये मुसलमानों की जो उनको जरा सी तम सस कुम आया, ठीक है, तो सिब कुम नहीं आया, जरा सी भी मुसलमान को कोई भलाई पहुंच जाए तो इनको बड़ी बुरी लगती है, बड़ी तकलीफ होती है कि इनको क्यों ये मिल गई। और कोई तो सिब कुम पहुंचती है तुमको कोई बुराई, यानी कोई गहरा जख्म आ जाए, कोई बड़ी बुराई पहुंच जाए, तो फिर उनको बड़ी खुशी होती है कि ये देखो अच्छा हुआ इनके साथ ये हुआ। यही एक मयार है आपको देखने का कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। लेकिन जितना दुख हो रहा था ये बात पढ़ के कि ये गैर मुस्लिमों की बताई गई कि वो यहूदी इतना ज्यादा बोझ रखते हैं मुसलमानों के साथ, मगर दुख मुझे इस बात का था कि आज मुसलमानों के अपने अंदर ऐसे लोग हैं जो दूसरे मुसलमानों के साथ ये ताल्लुक रखते हैं कि दूसरे को कोई भलाई पहुंच जाए, छुए भी भलाई, तो उनको बुरी लगती है। इसका बच्चे को कामयाबी क्यों मिल गई, इसका अच्छी जगह रिश्ता क्यों होगा, उसकी प्रोमोशन क्यों हो गई, इन्होंने बड़ा घर क्यों ले लिया, इन्होंने अच्छी गाड़ी क्यों खरीद ली, हाय इनके बच्चे तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, उसके ऊपर उनके दिल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि मर गए हैं। और अगर बुराई किसी को पहुंचे तो बड़े खुश होते, अच्छा हुआ ऐसा ही होना था इनके साथ, फिर खुशी करते हैं। अरे हमारे जवाल की कोई इंतहा है गिरने की? गिरने की कोई इंतहा है? जब ऐसे जज्बात किसी के दिल में भी किसी के लिए पैदा हों कि किसी की तकलीफ अच्छी लगे, कि अंदर अंदर खुशी हो रही है ऊपर ऊपर अफसोस कर रहे हैं, या किसी को भलाई पहुंचे तो अंदर दिल जल के कोड़ के खत्म हो गया, तो सोच लें कि ये फिर किन की क्वालिटी थी वो जो मग़दूबी अलैहिम थे। वह इन तस्वीरों, अब तुमने क्या करना है, अब उनके लेवल पे उतर आओगे जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करने लगोगे, या मार धाड़ के लिए खड़े हो जाओगे? नहीं, जब ऐसे लोग होते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हमारा तरीका क्या होता है, बस फिर हम उनके खिलाफ हो जाते हैं। अब पता चल गया कि हाँ वो तो जी हमारी बुराई पे खुश होते हैं, हमारी हमें को भलाई, और बाज दफा रिश्तेदारों में ही होते हैं ऐसे लोग, भलाई हमारी इनको बुरी लगती है, तो फिर अब हम उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर उनसे कता ताल्लुके करते हैं, फिर उनकी बुराइयां करते हैं। नहीं, वह इन तस्बीरू व तत्तकू ला यदुरुकुम कैदुहुम शैया। अगर तुम सबर करते रहोगे ना, सबर का मतलब क्या है यहाँ पे, सबर यानी इंतजार अच्छे दिनों का। अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुराई पहुंची है तो कोई नहीं, अच्छे दिन आ जाएंगे। और सबर क्या होता है, हालात के बदलने का। और सबर किस में, कि मैंने अपने दीन पे कायम रहना, मैंने नहीं छोड़ना, और वत्तकू और अल्लाह से डरते रहो कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास तुम्हारे अंदर रहे, तो फिर क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये उससे बेहतर है कि आप किसी के खिलाफ खड़े होके और फिर लड़े बाजू चढ़ा के, या उसके साथ कोई और नेगेटिव और कोई चीजें करने की कोशिश करें, उसके जवाब में कुछ अपनी सोचने शुरू कर दें, तदबीरें, तो उससे बेहतर है आप सब्र करें और तकवा इख्तियार करें। तो क्या होगा, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, उनकी चालें आपको कोई नुकसान नहीं देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूं, अगर लोग उस पर अमल शुरू कर दें तो उनके दीन और दुनिया के लिए वही काफी है, यानी और कोई भी नहीं चीज, उनके दीन और दुनिया के लिए वही काफी है। इतनी प्यारी वो आयत है और इतनी इंपॉर्टेंट आयत है। और वो क्या है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए जरूर कोई रास्ता निकाल देता है। सूरह तलाक की आयत है ये, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा के बारे में देखे अहमियत उसकी बता दी, कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे ना तो बस फिर अल्लाह तुम्हारे लिए कोई एग्जिट निकालेगा, अल्लाह तुम्हें उस मुश्किल से निकाल लेगा। तुमने बस ये याद रखना है कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना जिससे अल्लाह नाराज, तकवा का याद है ना, कि जो पिछली दफा बताया था, मैंने नहीं कोई गलत काम करना जिससे अल्लाह नाराज होता, और मैं नेकी करूंगी क्योंकि अल्लाह उससे राजी होता है चाहे मुझे कोई भी रोकता हो, तो ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो फिर वो तुम्हें नुकसान नहीं दे सकते। अदरवाइज उनका ये तरीका रहा है। अब सूरह आले इमरान के आखिर में भी अल्लाह ताला ने फरमाया यही बात को, लतुबलगुन्न फी अम्वालिकुम वअन्फुसिकुम वलतस्मउन्न मिनल लदीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वमिनल लदीना अशरकू अदन कथीरा, तुम जरूर आजमाए जाओगे तुम्हारे अपने मालों से और जानों से, और तुम जरूर सुनोगे इन अहले किताब से और मुशरिकीन से अजियत वाली बातें तुम्हें जरूर पहुंचेंगी, जरूर, ठीक है, ये बाज नहीं आएंगे। लेकिन वहां पे भी क्या कहा गया, वह इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सबर करोगे ना और तकवा इख्तियार करोगे, फ इन दालिक मिन आज़मिल उमूर, ये बड़े हिम्मत के कामों में से है, सारे नहीं कर पाते, लेकिन ये करोगे कोई तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। इन अल्लाह बीमा यामलून मुहैयत, जो भी वो अमल कर रहे हैं वो ऐसे ना समझो कि किसी को पता ही नहीं है, अल्लाह घेरने वाला है वो, उनको अल्लाह ने छुट्टी नहीं दी भी बिल्कुल, अल्लाह ने घेरा हुआ है, और अल्लाह ताला एक वक्त तक किसी को मोहलत देता है। तो इसलिए तुम ये ना समझना कि तुम अकेले ही हो, आए हमारा अब कौन वाली वारिस, आए ये तो हमारे साथ इतनी साजिशें करते हैं, आए ये तो हमारी भलाई को देख के जलते हैं कुड़ते हैं और हमारी मुसीबत पहुंचती है, तो देखो इनको कितनी खुशी हो रही है। मुल्कों में भी ऐसे होता है, दूसरे मुल्क को तकलीफ हो रही हो तो वो खुशियां मना रहे होते हैं, ठीक है, दूसरी कौम के साथ इतनी दुश्मनी होती है उनको, और आज भी मुसलमानों के साथ ऐसा है, कई कौमों को ऐसा है कि वो मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आती है तो बड़े खुश होते हैं, और उनको कामयाबी मिल जाए, वो उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कहीं दुनिया के अंदर उनको कोई पजीराई मिल जाए, या कहीं उनकी तरक्की की कोई बात हो जाए तो जल कोड़ के खत्म हो जाते हैं, उसको काटने की कोशिश करते हैं। तो नहीं, तुमने कुछ नहीं करना, तुम सबर और तकवा, कि तुम्हारे साथ अल्लाह है ना, अल्लाह खुद ही मुहीत है, घेरने वाला है उनकी जो भी उनकी चालें हैं सबको। ये हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी है, ये ओवर द ग्लोब जितनी दुनिया के अंदर भी चीजें होती हैं उसके अंदर भी हमें रहनुमाई मिलती है कि क्या है, लेकिन उनके रवैये बता दिए कि उनके ऐसे ही रवैये रहेंगे, अब उसके साथ ही आपको रहना है, वो इसी तरह रहेंगे, ये कोई नई बातें नहीं है, ये पहले की बातें हैं। तो लेकिन आपने चालें नहीं चलनी उनके जवाब में भी, कि आप भी उसी तरह हो जाओ, आप अपनी इसलाह करो, अपने अंदर झांको, आप सबर करो और तकवा की रफीश आपने नहीं छोड़नी है कि वो ऐसे करेंगे तो हम भी उनके लेवल पे आएंगे, ये नहीं करना, ठीक है। और उनकी चालों से इसका मतलब डरना नहीं है, क्योंकि जब आपको ये ईमान है कि अल्लाह बिमा यामलून मुहीत, तो फिर इंसान को स्ट्रेंथ आ जाती है कि कोई नहीं, अल्लाह ने उनके सारे जो वो कर रहे हैं उसको घेरने वाला है अल्लाह ताला, तो मुझे किस बात का फिर डर है। अल्लाह ताला इन आयात को समझने की और इन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
लन यदुरुकुम इल्ला अदा व इन युकातिलुकुम युवल्लुकुम अलअदबार थुम्मा ला युनसरून। ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط